चर्चा का विषय है कि अंतर्गत प्रस्तुत है त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक दीपक दीवान और सुब्रतो मुखर्जी। परिचर्चा का संचालन पत्रकार केवी प्रसाद कर रहे हैं।
उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसी महीने 18 तारीख को त्रिपुरा में 60 असेंबली चुनाव होंगे, साथ ही साथ नागालैंड और मेघालय 27 फरवरी को चुनाव होंगे। तीनों राज्यों में 60 विधानसभा के सीट हैं और तीनों की मतगणना मार्च के 3 तारीख को होंगी। इस बारी त्रिपुरा पे बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए भी है कि पिछले कई वर्षों से वहां पे वाम मोर्चा की सरकार, मार्क्सिस्ट के नेता मानिक सरकार की सरकार चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि पहली बारी बहुत दमदार रूप से उतरी है और माना जा रहा है कि त्रिपुरा में जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी जो है प्रबल दावेदार के रूप में उतरी है सीपीएम के खिलाफ। कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टी तृणमूल वहां से तकरीबन ना के बराबर है, लुप्त है चुनाव के मैदान में। नागालैंड और मेघालय में भी परिस्थिति बदली हुई है। नागालैंड में एक नया गठबंधन तैयार हुआ है भूतपूर्व मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो के तहत, और वहीं मेघालय में कांग्रेस 8 वर्ष से सरकार चला रही, लेकिन उनको भी वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी से अच्छा खासा टक्कर मिल रहा है। दीवान साहब, सबसे पहले त्रिपुरा, जहां की वाम मोर्चा की सरकार कई वर्षों से लगातार चले आ रही है, मानिक सरकार जो कि माने जाते हैं बहुत ही साधारण किस्म के मुख्यमंत्री है, जिनके बारे में एक ये कि उनके पास पैसा तो है नहीं, पीछे कुछ खाते उनके छपे कि 3-4 हजार रूपये ही सारे अपने बैंक के खाते में रखते हैं, लेकिन त्रिपुरा में जो देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी बड़ी दमदार दावेदार पेश कर रही है। चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रधानमंत्री एक दौरा लगा चुके हैं, कई सारे नेता वहां चुनाव के दौरे पे हैं।
देखिए, त्रिपुरा को अगर आप देखें पिछले 20 वर्षों से मानिक सरकार ही मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले भी इन्हीं पार्टी की सरकार थी और दशरथ देव थे वहां के मुख्यमंत्री। उससे पिछले 5 साल में जाएं 1988 से लेकर 1993 तक, तब वहां पे कांग्रेस की सरकार बनी थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार में इतनी खींचातानी हुई उनके बीच में आपस में कि सरकार ही दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाई। उसके बाद जो अपोजिशन का रोल भी कांग्रेस के पास ही रहा, मगर उन्होंने कोई ऐसा रोल नहीं निभाया जिससे कि लोग कुछ उम्मीद करते कांग्रेस से। इस बार भी जो विधानसभा थी उसमें 10 थे विधायक कांग्रेस के, उसमें से 6 लोग तो टीएमसी ज्वाइन कर गए थे, टीएमसी के बाद वो फिर बीजेपी में आ गए, एक विधायक जो था वो भी लेफ्ट फ्रंट को ज्वाइन कर गया। तो कांग्रेस की स्थिति ना के बराबर रही है अपोजिशन के अलावा, वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी नहीं है वहां। तो 20 साल का ये जो कार्यकाल रहा मानिक सरकार का, ये किसी भी अपोजिशन पार्टी के बिना रहा वहां, और इनकी सरकार थी, मनमानी चल रही थी, जैसे सरकार चलाना चाहती थी वैसे ही पुलिस भी चलती थी, वैसे उसी इशारे पे। आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले हमारे एक पत्रकार की हत्या हो गई थी, उसकी हत्या पुलिस ऑफिसर के ऑफिस के अंदर उसके पर्सनल बॉडीगार्ड ने उसको गोली मार के मार दिया। तो देखिए, ऐसा माहौल स्टेट में जहां हो तो दहशत बहुत फैली हुई थी वहां पर, स्टेट टेरर जिसको आप कहते हो। बीजेपी जो पिछले इलेक्शन में वो
1.54 बताते हैं,
तो इस बारी वो एक सही चुनौती दे रही है लेफ्ट फ्रंट को। कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि शायद लोग बदलाव चाहें तो बीजेपी को इलेक्ट भी कर लेंगे। जैसे प्रधानमंत्री अभी गए थे, उन्होंने नारा भी दिया, चलोय पलटाय, बंगाली में कहते हैं लेट्स चेंज, बदल दो। तो उस तरह की भावना लोगों में जो अभी दबी हुई थी अब उभर के आने शुरू हुई है। उसके बहुत कारण हैं, बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए वहां, देखिए वहां की जो जनसंख्या है 36 लाख है, उसमें से करीब 7 लाख या 7 लाख से ज्यादा नौजवान जो हैं बेरोजगार हैं। और दूसरी बात यह है कि वहां जो 60% पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन की, और मेरे ख्याल से कोई एफर्ट ही नहीं किया गया कि उनकी मदद की जाए, वो लोगों को उठाया जाए। जैसे आपने बोला कि जो वहां के मुख्यमंत्री की इमेज है कि वो पैसा नहीं है उनके पास, उनकी पत्नी जो साइकिल रिक्शा में जाके सब्जी लेने जाती हैं,
एक साधारण नागरिक की तरह,
एक गरीब सरकार जो गरीब प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है, वो इमेज बनी हुई थी। मगर देखिए, अगर ऐसी हालत थी तो ये रोज वैली जैसा चिट स्कैम स्टेट में कैसे हो गया, जिसमें आधे से ज्यादा पॉपुलेशन, 14 लाख लोगों की सेविंग जो है वो खत्म डूब गई। फिर 11,000 टीचर्स इरेगुलर अपॉइंटमेंट कैसे हो गई, जो हाईकोर्ट ने उठाया हुआ है मामला। तो ये सब मुद्दे हैं। बीजेपी ने वहां जाके प्रॉमिस किया है कि हम स्टेट में जो फोर्थ पे कमीशन पे अटकी हुई है मनिक सरकार, हम सेवंथ पे कमीशन देंगे जीतने के बाद। उन्होंने कहा है कि हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग जो इलेक्शन जीतने के बाद होगी 15 दिन के अंदर हम अनाउंस कर देंगे सेवंथ पे कमीशन। तो लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए वहां 1.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और 60,000 के करीब पेंशनर्स हैं, तो उनको ये सेवंथ पे कमीशन का बहुत लाभ होगा। और लोग जो हैं वो पुरानी विचारधारा, पुरानी वो गरीबी से बाहर निकल के मॉडर्न इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो बीजेपी ने एक बहुत अच्छी प्रोजेक्शन दी है, उम्मीद लगाई है लोगों के बीच।
प्रोफेसर साहब, त्रिपुरा में जैसे अभी आपने सुना कि वाम मोर्चा की कई सालों से सरकार है, लेकिन इस बार ये अच्छी खासी चुनौती वो महसूस कर रहे हैं। और अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर लड़ रही है और उन्होंने अपनी एक साझेदारी बनाई है इंडिजिनस पीपल के साथ, जिनको 9 सीटें जो ट्राइबल रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक पेचीदा मुद्दा लोग बताते हैं कि
दो ग्रुप है वहाँ, एक है INPT जिसका कांग्रेस के साथ अलाई है, और एक है IPFT इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जिसका अलायंस जो है बीजेपी के साथ।
लेकिन वहाँ पे एक मुद्दा कई सालों से उठता रहा है कि ज्यादा पावर्स चाहते हैं ट्राइबल इंडिजिनस लोग, और वहां की चूंकि पॉपुलेशन की इस तरह बटा हुआ है कि करीब 20 तो शेड्यूल ट्राइब सीटें हैं, 10 शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, तो इस सब में एक अलग राज्य की भी बात हो रही है, ऑटोनमस डेवलपमेंट को ज्यादा पावर्स है, तो एक पॉलिटिकल मुद्दा तो पहले ही तैयार हुआ है चुनाव होने से पहले।
पेशा देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे त्रिपुरा का जो पूरा राजनीति है वो आपका पार्टीशन के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि छोटी सी राज्य है। उदाहरण आप देंगे तो बाकी राज्य की तुलना एक डिस्ट्रिक्ट जैसा है कि बंगाली लोग जो कलकत्ता का तरफ नहीं आए वो आगरतला से त्रिपुरा में आके बैठ गए, और जैसे आप लोग कह रहे हो जो लोग उधर के रहने वाले हैं उनकी संख्या कम हो गई, एक स्थिति ऐसे आ गई कि बंगालियों की संख्या उनसे दोगुना हो गया। अब देखिए त्रिपुरा के लिए जो चीजें हैं वो नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य में वही है, जो इश्यूज है वो विकास की है, वो आपकी रोजगार की है, और उसके साथ ये भी है कि नरसिम्हा राव के जमाने में एक लुकईस्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई थी, उसके तरफ भी लोग काफी नजर दे के रखे हैं कि प्रगति कैसे हो। आपका पूरा जियोग्राफी आप नॉर्थ ईस्ट के देख लें तो इनके लिए मेनलैंड के जो कनेक्शन है वो बहुत ही कम है। एक दफा आपका दार्जिलिंग में कुछ रुक जाए, सिलीगुड़ी में रुक जाए तो पूरा सब कुछ चौपट हो जाता है। तो इसके साथ तो पहला एक चीज है जो राजनीति का अंग है, उधर के काफी लोग चाहते हैं कि केंद्र के साथ हमारा जो रिश्ता है वो ठीक ठाक बनी रहे। एक तो इस तरफ का आलोचना हम कर सकते हैं, दूसरा तरफ ये देखिएगा जो तृणमूल भी काफी कोशिश किया था कि नॉर्थ ईस्ट में अपने बढ़ाव आगे करे, जैसे अभी दीवान जी ने कहा कि उधर तृणमूल की संख्या काफी हो गई थी और ममता ने भी काफी जोर लगाया, पर वो जोर ज्यादा देर टिकी नहीं और वो सारे लोग अब बीजेपी में चले गए। तो देखिए बराबर का टक्कर है, 25 साल कोई राज करेगा तो उसके लिए कुछ नया कहना ऐसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो लोग कोशिश जारी है, उन लोग भी कुछ करे, बीजेपी अपना दम लगा के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है देखने की होगी त्रिपुरा में कोई भी जीते लोकतंत्र का ही जीत इसलिए होगा कि लोग की भागीदारी बढ़ रही है और लोग चुन चुन के हर इश्यूज को हर विषय को देख के फिर वोट दे रहे हैं। जो आपने बताया पे कमीशन का वो भी एक मुद्दा है, पर उसके साथ बाकी चीजें भी हैं, जैसे आपने करप्शन की बात की वो भी एक मुद्दा है। उसके साथ सबसे बड़ी जो चीज मुझे लगती है जो एक निर्णायक हो सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट त्रिपुरा में कैसे लाया जाए। देखिए ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा राजनीति है वह है सरकारी नौकरी के ऊपर पूरा बेस्ड है, इससे हटे कैसे, और इससे जो ये सारे लुकईस्ट पॉलिसी है, म्यांमार बॉर्डर है, बांग्लादेश के साथ स्थिति सामान्य करने का, ये सारी चीजें हैं। इसे मैं कहूंगा जो चुनाव हो रहा है उसमें बहुत सारे इश्यूज उगर के आएगी और वही जीतेगा जो लोगों को समझ आएगी कि ये हमारे लिए काम करेंगे।
दीवान साहब, मैं आंकड़े देख रहा था पिछले चुनाव 2013 में, तो आपने भी कहा 1.54% तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, जिसमें 50 सीटों पर लड़ी तो 49 में उनकी जमानत जब्त हो गई, और CPM को 48 के आसपास वोट पड़े, कांग्रेस को 36। लेकिन एक और जो आंकड़ा देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जो फैलाव है 2015 में करीब 2.25 लाख अगर मेंबरशिप है, आज 4 लाख हो गए, काफी विस्तार हुआ है उसकी पार्टी का। और साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि तृणमूल से भी लोग पहुंचे हैं, तृणमूल के जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के भी कुछ नेता इधर पहुंचे हैं, और मानिक सरकार के खिलाफ तो दो महिला कांग्रेस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में उनको खुद भी घेरने की कोशिश हो रही है।
हम अपनी बात बोलने की बजाय अगर हम एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को कोट करें, तरुण गोगोई जो त्रिपुरा इंचार्ज बन के वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने एक पत्रकार से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है किसी तरह से बीजेपी का जो संगठन तरीके से वो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं है हमारा। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप देखें जितनी भी चुनावी रैली हो रही हैं त्रिपुरा में, एक भी रैली अगरतला में नहीं हुई है अभी तक। सारी रैली जो है इंटीरियर्स में, जो ग्रास रूट लेवल जहां पे रिमोट एरियाज हैं वहां जाके ये लोग रैली कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से ग्रास रूट लेवल पे वोट बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब बीजेपी ने रिसेंटली किया है, 5 साल में काम किया है। सीपीआईएम भी कार्डर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी भी कार्डर बेस्ड पार्टी ही है। बीजेपी ने क्या किया, त्रिपुरा दे दिया सुनील देवधर को, जो
राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रचारक
चुके हैं, इससे पहले वो इंचार्ज थे मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी, वाराणसी के भी, उनको दिया। उन्होंने जाके सबसे पहले वहां
पालघर महाराष्ट्र में उन्होंने पलटी करवाई।
उन्होंने एक नेता चुना बिप्लब कुमार देव, जो 47 वर्ष के हैं, उनको प्रोजेक्ट किया है एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। उसके नेतृत्व में पूरा कैंपेनिंग हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। कांग्रेस तो अपोजिशन का जो रोल होता है, अपोजिशन पार्टी की जगह आज बीजेपी ऐसे खड़ी हुई 5 साल में, तो उसका नतीजा यह है कि आज आप देख रहे हैं कि वहां लेफ्ट फ्रंट भी थोड़ा घबराया हुआ है, कोई कंफर्टेबल नहीं है। जैसे वो 20 साल में जीतते रहे हैं, इस बार शायद जीतना भी मुश्किल हो सकता है उनके लिए।
प्रोफेसर साहब, एंटी इनकम्बेंसी तो हमेशा रही है, और खासकर जब आप 20 साल से सरकार चला रहे हैं, जैसे आपने कुछ मुद्दे बताए, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार के बारे में कई बार खबरें छपती रही त्रिपुरा से लेकर, साथ ही साथ जैसे दीवान साहब ने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, नौकरियां हैं नहीं लोगों के पास, और जैसे आपने भी कहा कि प्राइवेट निवेश कैसे बढ़ा जाए, लुकीज पॉलिसी में जो कनेक्टिविटी की बात हो रही है वो भी कहीं से ठहरा हुआ है, तो काफी सारी समस्याएं जो हैं समाधान सरकार ढूंढती है, वायदे हैं। लेकिन जो सेपरेट त्रिपुरा लैंड की एक बात बीच में उठी थी, हालांकि एक पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उन्होंने ये कहा है कि ये मुद्दा चुनाव के बाद का है, इस वक्त हमारी प्राथमिकता है कि हम सीपीएम को वहां से हटाएं, तो आपकी क्या समझ है इसके बारे में?
ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल का तो पावर ज्यादा ये लगता है जो हो सकता है, पर सेपरेट स्टेट के बाद तो उसमें दम नहीं है। देखिए, एक चीज जो सीपीएम के तरफ है वो है कि जो सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम पहले जितना त्रिपुरा में था, अब शांति उन्होंने काफी बरकरार किया। पर जैसे दीवान साहब ने कहा, बाकी सारे गड़बड़ भी उसमें है, और जो विपक्ष का जो रोल था वो शायद बाकी दलों ने नहीं निभाया, और स्वाभाविक है कि राजनीति में खाली जगह तो नहीं रहती है, बीजेपी आके वो पूरा कर दिया, और एकदम बराबर का टक्कर लग रहा है। और चुनाव जो माहौल है उसमें सबसे बड़ी जो चीज है, नई इश्यूज आ रही है। देखिए, त्रिपुरा में गैस रिजर्व बहुत है, उसको लेके भी काफी चर्चा हो रही है। जो हमारे पास इतना साधन है फिर भी हमारा विकास क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है जो एक टर्निंग प्वाइंट इस चुनाव में त्रिपुरा में ये होगा कि अगले सारे चुनाव में बाकी सारे चीजें सेकेंडरी होगा, विकास सबसे ज्यादा होगा, और उससे कोई जो जीतेगा भी उसको भी एक नोटिस मिलता रहेगा कि आप काम नहीं करोगे तो आप टिकोगे नहीं।
दीवान साहब,
देखिए प्रधानमंत्री अभी गए थे तो अगरतला के बाहर रैली करी उन्होंने, एक रैली करी थी उन्होंने सोनामुरा में, दूसरी करी थी कैलाश शहर में। वहां उन्होंने ये एक चीज बोला था कि जो सेंट्रल फंड्स हैं यूटिलाइज नहीं हो रहे यहाँ पे,
ये 100 में से 80 रूपये से केंद्र देती है।
तो ये खुद बोलती है बात उनकी कि कैसे तो ये सरकार शायद जान के इसको रिमोट रख रही।
अब अगर रुक करें मेघालय की ओर, मेघालय में भी चुनाव जैसे पहले मैंने कहा 27 फरवरी को है, और वहां पे भी बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस वहां 8 साल से सत्ता में, मुकुल सांगमा के तहत सरकार चला रही है, लेकिन कई सारे मुद्दे वहां पे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां फिर से एक टक्कर के रूप में उतरी है, और जैसे अगर 55 सीटें जो शेड्यूल ट्राइब्स की हैं और करीब करीब 18 लाख अगर हम वोटर गिने, 372 उम्मीदवार हैं जिसमें 32 महिलाएं हैं, अगर देखा जाए वहां सबसे बड़ा मुद्दा है कोयला, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो अप्रैल 2014 का जो ऑर्डर था जिसमें कोयला बैन किया गया, तब से खासकर जंटिया हिल्स में वो एक चुनावी मुद्दा उभर के बना है, चाहे उस इलाके के तक सीमित हो, और साथ ही साथ और जो मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं विकास के।
मेरे विचार से जो कोयले का मुद्दा है उसमें जो ट्रेडर्स हैं वो ज्यादा इफेक्टेड हैं, पूरी पब्लिक के कोई लेना देना नहीं है इससे। मेघालय में सबसे बड़ी समस्या रही है स्टेबल गवर्नमेंट की, कांग्रेस की सरकार रही
5 साल से तो मुकुल सांगमा ने,
और 5 साल में से कम 2 साल विधायक जो है अपोजिशन दिल्ली में बैठे रहे, जो अरुणाचल में हुआ था वही यहां भी हो रहा था। मेघालय में, तो एक तो स्टेबिलिटी नहीं रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे बिल्कुल, स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कोई आपका डेवलपमेंट काम भी नहीं होगा, फिर करप्शन भी बढ़ता है उस पर। ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो उसी वजह से देखिए जब इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी तो जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने, मिस्टर डीडी लपांग ने बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा इलेक्शन, वो नहीं लड़े और लोग पार्टी छोड़ गए, तो एनपीपी ज्वाइन कर गए। अब क्या हो रहा है वहां पे, जो इलेक्शन में मेनली थ्री कॉर्नर इलेक्शन होगा, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तीसरी तरफ है एनपीपी, बाकी जो छोटी रीजनल पार्टीज हैं यूडीपी, देन नेशनल पीपल्स पार्टी, उनका तो अलायंस हो चुका है,
एचएसपीडीसी
है, एनपीपी के दो एमएलए ऑलरेडी थे यहाँ पे। एनपीपी एक नई उभरती हुई पार्टी नजर आ रही है अब नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में भी उनके चार एमएलए बने थे जिसमें से डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एनपीपी के हैं मिस्टर जॉय कुमार, एक मेडिकल मिनिस्टर भी है उनके वहां पे। तो इस पर एनपीपी और बीजेपी का फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा, और जो नजर आता है सीन वहां पे कि सरकार बनने की जो उम्मीदें हैं, मुझे लगता है शायद एनपीपी और बीजेपी मिलकर बनाएगी, क्योंकि मणिपुर में भी उनकी सरकार है।
जैसे ज्ञात है एनपीपी भूतपूर्व लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष बी एस सांगमा की पार्टी रही, और बाद में उनके लड़के कॉनरेड जो इस वक्त अध्यक्ष है, और मेरे ख्याल से एनपीपी काफी अग्रसर है। प्रोफेसर साहब, आप मेघालय को कैसे देखते हैं, क्योंकि मेघालय में जिस तरह से ट्राइबल इलाके हैं, हिल इलाके हैं, इसमें अलग अलग मुद्दे भी हैं। एक बड़ा मुद्दा जैसे कहा कोयला के, जो से बात की, कहा जाता है कि 2014 में जो ये ऑर्डर हुआ उसके बाद वहां के व्यापारी, जैसे इन्होंने कहा दीवान साहब ने, करीब 6 मिलियन मेट्रिक टन तो वहां कोयला है, और 2013 में 60 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया। तो इतना बड़ा राजस्व एक छोटे राज्य में अगर कम हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वहां की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता ही है।
देखिए मेघालय में पैसा का तंगी तो है, सरकार के काफी जो विकास की चीजें हैं रुका पड़ा हुआ है, पर इसके साथ ये भी देखिए जो चुनाव हो रहा है उसे करोड़पतियों का कमी नहीं है। आप देखेंगे जो 100 करोड़ से भी ज्यादा का संपत्ति वाले भी लड़ रहे हैं मेघालय में। मुझे जो लगता है जो बेसिक जो मुद्दे हैं उसमें एक शिक्षा का क्या स्तर होगा इसको लेकर लोगों को काफी चिंता है। वो चाहते हैं कि कम से कम इधर एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, और इसके साथ जो एक बहुत बड़ी चिंता उनकी है जो बिजली की सप्लाई है वो मेघालय में ठीक नहीं है। तो ये चाहते हैं एक जो ऐसे कोई सरकार बने जो ये सारे विकास का जो पूरा जो मुद्दा है उसको आके ले जाए, और इसके साथ बांग्लादेश बॉर्डर का जो सिचुएशन वो भी एक मुद्दा होता है कि जो इन्फ्लक्स बांग्लादेश से होता है उसको लेके भी चिंता है। तो इसका मतलब ये है ये चाहते हैं कि एक स्ट्रांग सरकार बने, पर अभी तक जो इंडिकेटर्स है मेघालय में ये लगता है जो अगला जो सरकार भी होगी मिली जुली होगी, अभी तक नहीं लगता जो कोई एक दल को मेजोरिटी मिल जाएगा। पर मैं ये भी कहूंगा जो कांग्रेस के लिए मेघालय एक टेस्ट केस है, क्योंकि देखिए अभी जो चुनाव में पहले ही उधर देख रहे हैं बीजेपी का शासन तीन तो स्टेट में बरकरार हो ही गया है, और इसके बाद कांग्रेस के बाद मेघालय भी ना रहे तो इनके लिए एक अस्तित्व के संकट हो सकती है। इसलिए इनकी पूरी कोशिश यही होगी हम किस तरह सरकार बना लें, पर अभी तक जो लग रहा है किसी भी एक दल का पल्ला भारी मुझे नहीं लग रहा है।
दीवान साहब, जैसे कोयले की बात की थी आपने, कहा वो एक व्यापारिक समूह को ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको एक परेशानी और है। वहां पे जो चावल उगता था, क्योंकि जो राष्ट्रीय हरित ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आया था वो बेसिकली इसलिए आया था कि गैरकानूनी तो था ही, साइंटिफिक बेसिस पे वो नहीं होता था, इसकी वजह से माइनिंग नहीं होता था। वही वजह से वहां पे जो कल्टिवेबल लैंड था जिसमें फसल उगाई जाती थी वहां समस्या आ गई, पानी भर गया, पूरी खराब हो गई। लेकिन कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ लोगों का यह वायदा है कि बहुत जल्दी इसके पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है।
वो ये कहा है कि हम लोग इसका कुछ तरीका ढूंढेंगे।
जी,
आप एकदम अनसाइंटिफिक वे से करने लग जाओ उसका नुकसान तो होगा ही,
पर्यावरण पे जो बिल्कुल नुकसान हुआ वहां पे,
मगर उसका अगर आप सोच समझ के टेक्निकल तरीके से अगर उसको करें तो उसका
वैज्ञानिक तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। तो लेकिन मेघालय में जो दूसरे जो स्थान, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, शिक्षा को लेकर है,
मेडिकल है, मेडिकल है, पावर सप्लाई है। एक टाइम मेघालय यूज टू बी सरप्लस होती थी पावर मेघालय में, आज की डेट में उनका जो यूनिट उन्होंने बड़ा पानी के पास बनाया था इंडस्ट्रियल टाउन, वो बिजली की कमी से नहीं, लोग परेशान हैं वो।
तो आपको लगता है आने वाले दिनों में ये जो मुद्दे हैं जैसे कि लोगों से जुड़ी हुई है, और जैसे हम जानते भी हैं कि भारत के अन्य बड़े बड़े राज्यों में हमारे उत्तर पूर्वी के छात्र पढ़ने आते हैं, मेघालय से भी अच्छे खासे लोग दिल्ली में और बाकी राज्यों में आते हैं, तो ये पलायन का कारण भी जो है उच्च स्तरीय शिक्षा का ना होना भी एक माना जाता है।
देखिए शिलांग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईएमएम
मैनेजमेंट
वो नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र वो सबसे पहले वहां खुला है, तो नॉर्थ ईस्ट के सारे बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। और जो शिलोंग स्पेशली जाना जाता है एजुकेशन हब, दार्जिलिंग से पहले लोग शिलोंग जाते हैं सारे पढ़ने के लिए। बहुत अच्छे पुराने कॉलेजेस हैं, फिर नेहरू यूनिवर्सिटी है, तो ये पूरे रीजन को केटर करता है।
तो ये ऐसा है, विकास जितना होगा, जितनी खासकर जो एक युवा हमारे भारत के हैं, कि कहा जाता है 50% से ज्यादा तो हमारे युवा हैं, छात्र भी है इसमें, तो उनके लिए अगर प्रगति का रास्ता है और वो भी एक आकांक्षा रखते हैं कि भारत के अन्य प्रांतियों की तरह वो भी तेजी से बढ़े। अगर हम चले नागालैंड, अब नागालैंड में भी चुनाव 27 तारीख को है, यहां पे बड़ा ही रोचक मामला उठ के आया है, क्योंकि जैसे चुनाव से पहले बात हुई थी कि तरह से चुनावी बहिष्कार की बात चली, कई सारे राज्य के पार्टियों ने नागा हो जो वहां का एक ट्राइबल है उनकी बात पे एक हस्ताक्षर भी करते 11 पार्टियों में, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग किया। और अब आलम यह है कि करीब 200 के ऊपर लोगों ने पर्चे भरे और 195 आज मैदान में है, और नेफियर रियो जो कि वहां के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो निर्विरोध चुने गए हैं। तो सबसे पहले ये जो विरोधाभास शुरू में दिखने लगा कि चुनाव के पहले दिन तक तो पर्चे तकरीबन ना के बराबर थे और अचानक फिर पर्चे भरे लोगों में, तो जो नागा का समस्या है पिछले 20 सालों से इस पर समस्या पे चल रहा है समाधान होने के लिए, एक पैक्ट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग भी हुई भारत सरकार की, और वहां के जो लोग चाहते हैं कि पहले नागा सॉल्यूशन हो फिर इलेक्शन हो, तो इन दोनों के बीच ये चुनाव फंसा हुआ है।
देखिए, इन दोनों के बीच चुनाव हो रहा है, फंसा हुआ था, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब ये बहिष्कार की बात हुई तो बीजेपी ने पहल की, उन्होंने बोला नहीं हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर सारी पार्टीज ने कहा कि अगर बीजेपी अकेली लड़ेगी तो अनपोज जीत जाएंगी, तो हम बोला हम भी लड़ेंगे, सबने फिर नॉमिनेशन फाइल किए। ये सिचुएशन 1998 में हुई थी, जब उस टाइम एससी जमीर थे चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस की सरकार थी, मगर उस टाइम की स्थिति और अब की स्थिति में अंतर यह है।
97 में ही अकॉर्ड हुआ था नागा
जी, 98 में इलेक्शन होना था, मगर उस टाइम क्या था कि एससी जमीर वो NSCNIM के अगेंस्ट थे,
जिन्होंने इस वक्त हस्ताक्षर किए हैं पैक्ट जो कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे।
हाँ, NSCNIM का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ 2015 में जब ये सीज फायर साइन हुआ था, तो वो चीफ मिनिस्टर थे वहां के, वो हमेशा से NSCNIM के अगेंस्ट रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि वो जो राइवल फैक्शन है NSCNK
खपलांग,
उसके समर्थक रह चुके हैं, ये लोगों का मानना है। खैर, उस समय नागा हो NSCNIM और नागा स्टूडेंट फेडरेशन, इन्होंने बायकॉट कॉल दी थी और सारी पार्टियों ने बायकॉट कॉल का समर्थन किया और नॉमिनेशन नहीं फाइल किया, सिर्फ कांग्रेस ने नॉमिनेशन फाइल किए थे और 53 सीट्स अनअपोज जीत गए थे वो, और बाकी और जगह उन्होंने डमी कैंडिडेट्स खड़े करके इलेक्शन दिखाया और वो 5 साल उन्होंने राज किया, उसका मुआवजा उनको देना पड़ा अगले चुनाव में जब कांग्रेस की वहां से सफाई हो गई और कांग्रेस के सारे लोग छोड़ के नेफ्यू रियो, थेरे और शुरुजले, इन तीनों ने मिलकर NPF का गठन किया था। फिर वो डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड डैन गवर्नमेंट बनी, जिसमें बीजेपी भी भागीदार के साथ इनके चलती आई है,
जनता दल यूनाइटेड उसको कर चुकी।
मगर इस बारी जब ये बीजेपी ने बोला कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और सारी पार्टियों ने फाइल कर दिया, तो अब ये इलेक्शन तो हो ही रहा है। अब इसमें क्या है कि बीजेपी ने अपना दामन NPF से छुड़ा दिया, जो नई पार्टी बनी थी NDPP, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी,
जो कि रियो साहब ने तैयार की है,
उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया है। 20 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है और 40 सीटों पे NDPP लड़ रही है, उसमें से एक सीट वो अनअपोज अनकंटेस्टेड जीत चुके हैं। और वहां मजे की बात यह है कि 5 महिलाएं हैं इस बार, जिसमें बीजेपी ने एक महिला को उम्मीदवार घोषित किया है, NPP ने 2 महिला उम्मीदवारों को घोषित किया है, NDPP की 1 उम्मीदवार है और इंडिपेंडेंट जो है वो 1 है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको याद हो पिछले साल जब वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन होना था, तो ये अनाउंस किया गया था 30% सीट
महिलाओं
के लिए होगी,
जिसको लेकर काफी सारा
विरोध हुआ, लोगों ने कहा कि ये एंटी ट्राइबल है, हमारे पे इम्पोज कर रहे हो आप 30% करके, तो
मुख्यमंत्री को काफी परेशानी,
मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी TR जेलियां को, तब शुरुजले मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जब उन्होंने साइन किया था एग्रीमेंट विद चर्च लीडर्स कि हम इलेक्शन नहीं होंगे, मगर मुख्यमंत्री अपने वादे से हट गए, तो उस पर प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें 2 लोग मारे गए थे, उसके बाद लोगों ने कहा कि इस मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए, तो TR जेलियांग ने रिजाइन किया। अब देखने की बात यह है, ये तो कोई इम्पोजिशन नहीं है, कोई भी लड़ सकता है। अब देखते हैं इनका भाग्य कैसे चलता है, पांच महिलाओं का। ये मैं आपको अगर थोड़ा बता दूं इनके बारे में
जी।
एक है रखीला, ये 66 वर्ष की हैं, ये ट्विनसांग सदर से बीजेपी की सीट पर लड़ रही हैं। फिर है रेखा रोज डुकरू, ये 35 साल की हैं, ये चिजामी सीट पर लड़ रही हैं एज ए इंडिपेंडेंट। फिर है वेडीयू क्रोनू, ये 27 साल की हैं, ये एनपीपी की सीट पर लड़ रही हैं। फिर है डॉक्टर मांग यांगपुला चांग, ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, ये 45 साल की हैं, ये भी एनपीपी की सीट पर लड़ रही हैं। ये लड़ रही हैं नॉक्सेन से कॉन्स्टिट्यूंसी से। फिर जो आखिरी कैंडिडेट हैं अवान कोन्याक, ये 38 साल की हैं, ये एनडीपीपी की सीट पर लड़ रही हैं अबोई एसी से। तो ये देखना होगा कि इस बारी क्या एक महिला चुनाव में जीत सकती हैं, क्योंकि नागालैंड में 1977 में एक महिला जीती थी, रानो शायजा। उन्होंने होकिशे सेमा को पार्लियामेंट्री सीट में हरा के एमपी की पोस्ट जीती थी।
देखेंगे उसके बाद कोई महिला नहीं बनेगा नागालैंड। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये तीनों राज्यों में वैसे काफी हद तक अब तो बिल्कुल शांतिपूर्ण राज्य हैं, हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज का अच्छा खासा बंदोबस्त रहेगा, क्योंकि खासकर त्रिपुरा में पहले हो जाएगा, उसके बाद नागालैंड और मेघालय में साथ साथ है, तो कुछ फौजें जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज हैं तीनों तरफ तैनात भी हो जाएंगी दोनों राज्यों में भी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पहल हुई है, जब से असम का चुनाव हुआ, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, हेमंत बिस्वाल शर्मा जो असम के पहले कांग्रेस के बड़े गद्दावर नेता थे उस इलाके के, उनकी तहत ये हुआ। तो आप समझते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की धीमे धीमे बढ़त प्राप्त होती जा रही है उत्तर पूर्व राज्यों में, असम गया, मणिपुर बना, इस तरह से अब इन तीनों राज्यों में अपना फैलाव की उनके पास एक अच्छा मौका है।
देखिए कोशिश तो पूरा जारी है, जो बीजेपी जितना आगे जा सकता है वो तो चाहेंगे लीडर्स। और इसके साथ देखिए जो नागालैंड के बारे में दो तीन चीजें हैं
जी,
उधर भी सबसे बड़ी मुद्दा रोजगार की है, करीबन 70,000 लोग बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, और उधर भी वही त्रिपुरा जैसे हाल है कि सरकारी नौकरी बिना और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ और एक चीज जो पहला दफा देखा गया, उधर सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव हो गया, और ये जो चुनाव ना करने और करने का जो दुविधा थी उसमें साधारण लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा था। और उसके साथ और एक भी जो सुरक्षा का बात जो आ रही है वो भी एक बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि नागालैंड में आप देखेंगे डिमापुर बोल के एक जगह है जहां परमिट नहीं लगता है, उधर बिजनेस वजनेस काफी आगे चलता है, और बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज है शांति। और बड़ा लंबा जो सीमा है इनके साथ म्यांमार का, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बनता है। इसलिए मैं कहूंगा नागालैंड के जो काफी इश्यूज हैं और बाकी दो राज्य में भी काफी कॉमन पॉइंट्स भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, पर सबसे पहले आप मुझे कहेंगे जो सबसे बड़ी मुद्दा क्या है, मैं कहूंगा विकास और बेरोजगारी।
दीवान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
सबसे बड़ा मुद्दा जो है नागालैंड में वो है सोल्यूशन टू दी ऑनगोइंग टॉक्स, जो वार्तालाप चल रहा है इसका सलूशन लोग चाहते हैं जल्द से जल्द। 21वां साल चल रहा है सीज फायर के बाद जो बातचीत चल रही है। अब हालात ये है कि पहले एनएससीएन के साथ शुरू हुआ था, उसके बाद अब जितने भी गुट हैं, 6 और गुट हैं, उनसे पिछले साल उनसे भी वार्तालाप शुरू हो गई है। तो इसलिए लोगों को बहुत उम्मीद है, वो इसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। शायद इसीलिए प्रेशर बनाने की कोशिश करी गई थी कि आप पहले सोल्यूशन करिए फिर इलेक्शन करिए, जब उनको समझ आया कि दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। आरएन रवि जो इंटरलोक्यूटर हैं टॉक्स के, उन्होंने भी बोला कि इलेक्शन से वार्तालाप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए बार बार असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास होता रहा है कि जब भी कोई सोल्यूशन आएगा हम लोग रास्ते में नहीं आएंगे, सब पॉलिटिशियन कहते आ रहे हैं। और आप सुन भी लेंगे, जो भी सरकार बनाएगा उसका पहले दिन वो यही बोलेंगे कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी सोल्यूशन के लिए हम लोग वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस।
और इसके लिए अगर इतिहास देखें तो असम एकॉर्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जब असम एकॉर्ड हुआ तो ऐसा ही हुआ। आने वाले दिनों में मार्च 3 पूरे भारत की नजर रहेगी कि उत्तर पूर्वी के 3 इलाकों ने अपने कैसे चुनाव किया और कैसे अपनी सरकारें बनाई। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद
धन्यवाद आपका।
अभी आप त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक दीपक दीवान और सुब्रतो मुखर्जी। परिचर्चा का संचालन पत्रकार केबी प्रसाद कर रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।